श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग एक मिनट के लिए खड़े हो जाइए, हाथ उठाइए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। एक लंबी सांस लीजिए और बैठ जाइए ताकि अगले प्रवचन में आप मुझे जगह मिलेंगे, सोते हुए नहीं मिलेंगे। हरे कृष्णा। सब लोग बैठ गए। हरे कृष्णा। तो मैंने आपको कथा बताई थी रूप और सनातन गोस्वामी की। हरे कृष्णा। तो इनमें से इनके और एक भाई थे, श्री वल्लभ उनका नाम था, रूप सनातन और श्री वल्लभ। तो श्री वल्लभ उन्होंने जब भगवान से अनुग्रह प्राप्त किया तो उनका नाम अनुपम पड़ा। तो अनुपम गृहस्थ थे, रूप सनातन सन्यासी बने, वृंदावन में आए। लेकिन अनुपम भी बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो गृहस्थी थे। तो उनको एक पुत्र हुआ, उनका नाम था जीव। जीव तो जब जीव का जन्म हुआ तो बचपन से ही ये भगवान के भक्ति में इतना मग्न थे, इन्होंने कृष्ण बलराम के विग्रह लिए अपने पिताजी से। और बचपन में वो रोज कृष्ण बलराम के विग्रहों को ऐसे गले लगाकर सोते थे। हमारे बच्चे होते ना, वो गुड़िया को ऐसे गुड़िया को लेकर सोते ना, वैसे वो कृष्ण बलराम के विग्रहों को गले लगाकर सोते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको भोग लगाते थे, उनकी आरती करते थे, इतने से बालक। और इतने बुद्धिमान थे कि कुछ ही दिन के बाद बालक अवस्था में भी उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, विद्वान हो गए, विद्वान बालक अवस्था में ही बड़े पंडित हो गए। और जो बचपन का जो सहज भाव था ना उनका, वो ज्ञान के साथ और संपूर्ण हो गया, परिपूर्ण हो गया। तो जब युवा अवस्था में आए ना तो इनके कृष्ण बलराम जो है उनके आंखों के सामने गौर निताय बने। एक दिन कृष्ण बलराम ने दर्शन दिया, कृष्ण ने गौरांग महाप्रभु का दर्शन दिया और बलराम जी ने नित्यानंद प्रभु के रूप में दर्शन दिया। तो भाव विभोर होकर बेहोश हो गए वो, फिर जगे तो वापस कृष्ण बलराम। फिर उसके बाद वो अपने, वो क्या हुआ ना, मैं आपको बताया था, आपको याद होगा, तो कि जब रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु को राम केली में मिले बीच रात में, बताया ना, दंते तृण धोरी बोले, हाँ दांत में तृण लेकर जब गए ना, तभी उस समय वहां पर जीव गोस्वामी भी थे बालक रूप में, अनुपम भी थे और छोटे से बालक थे। वो देख रहे थे कि हमारे चाचा लोग कैसे महाप्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो उसी समय उन्होंने अपना जीवन मन से महाप्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया था। तो वो नवद्वीप में आए, महाप्रभु की सेवा में रहे। फिर नवद्वीप से जब आए वो, तो महाप्रभु सेवा में नहीं रहे, लेकिन नवद्वीप में जब गए तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आए हुए थे उस समय, बलराम जी के अवतार। तो नित्यानंद प्रभु जी ने जीव गोस्वामी को स्वयं नवद्वीप की परिक्रमा दी है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे, नित्यानंद प्रभु कहते हैं आपको पूरा महाप्रभु जी का जन्मस्थान पूरा भ्रमण करना चाहिए, आप यात्रा कीजिए। तो जीव गोस्वामी हाथ जोड़ के कहते हैं नित्यानंद प्रभु मैं आपको ही विनती करता हूँ कि आप ही मुझे दर्शन कराइए ये सब चीज़ का। कितना बड़ा भाग्य, देखो बलराम जी को स्वयं बोल रहे हो कि मैं धाम के दर्शन कराओ। तो नित्यानंद प्रभु ने बड़े प्रेम से इनकी भक्ति भाव को देखते हुए पूरे ब्रज नवद्वीप मंडल का दर्शन कराया उनको। और वो जो दर्शन है उन्होंने जो कराया उसकी एक किताब अवेलेबल है, नवद्वीप परिक्रमा, हाँ नवद्वीप महात्म्य ऐसे कुछ एक किताब है, वो ठाकुर भक्ति विनोद ने लिखी है। उसमें जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने जो परिक्रमा करवाई थी उसके पूरा वर्णन उसके अंदर है। आप पढ़ेंगे तो आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना सुंदर वर्णन है हर जगह पर। अभी हम लोग भी दर्शन करने आए, इसमें कोई बेहोश हुआ क्या भगवान को देखकर? मैं भी नहीं हुआ, आप भी नहीं हुए, क्या करें, इतना भाव किसके अंदर है। जे गोस्वामी जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए और जहां जहां रहे उनके घर में, जहां जहां लीला किया नवद्वीप में, हर एक जगह जाकर बेहोश होकर गिरते थे वो। बार बार नित्यानंद प्रभु उनको उठाते थे प्रेम से, अगला स्थान दिखाते थे, अगले स्थान पे बोलते थे, अरे मैं जब महाप्रभु यहाँ पर लीला कर रहे थे तब मैं यहाँ पर क्यों नहीं आया, मैं इतना दुर्भाग्य हूं कि बाद में क्यों आया, मैं काश मुझे दर्शन हो जाए उनका। तो श्रीवास आंगन में नित्यानंद प्रभु उनको दर्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये श्रीवास आंगन है, यहाँ पर महाप्रभु ने संकीर्तन शुरू किया था, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन शुरू किया था, रात का नृत्य भी शुरू किया था। ऐसे करते करते उनको इच्छा हुई, क्या मुझे दर्शन हो सकता है क्या उसका। तो उनकी आंखों के सामने महाप्रभु चैतन्य वहां प्रकट हो गए। महाप्रभु चैतन्य अभी जगन्नाथपुरी में है लेकिन वहां प्रकट हो गए, नित्यानंद प्रभु उनके साथ में थे, ज्वाइन हो गए और दोनों ने धूमधाम से कीर्तन किया। सारे भक्त भी प्रकट हो गए जो वहां पर नहीं थे उस समय, उनको दर्शन दिया उन्होंने और वो कीर्तन देखकर वो गिर गए, बेहोश हो गए। जब होश में आए तो सब जा चुके थे, छाती पीट कर रोने लगे कि मैं क्यों नहीं था, इतना दुर्भाग्य क्यों हूं मैं, इस जगत में होते हुए मैं उस समय नवद्वीप में क्यों नहीं था। देखो ये आतुरता होनी चाहिए, ऐसी उत्सुकता आतुरता होनी चाहिए, तब जाके भगवान मिलते हैं। भगवान भी मजबूर हो गए दर्शन देने के लिए, कहीं और लीला कर रहे हैं लेकिन वहां प्रकट हो गए भगवान। ऐसे ही उधर खेतुड़ी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर ने पहली बार गौर पूर्णिमा का उत्सव आरंभ किया था, तब तो महाप्रभु जा भी चुके थे दुनिया छोड़कर, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के प्रथम गौर पूर्णिमा में जब जानवा देवी भी वहां मौजूद थी उनके साथ में जब कीर्तन हुआ सब लोगों का, तो वहां पर साक्षात नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों के साथ प्रकट हो गए। अद्वैत आचार्य सभी पंचतत्व प्रकट हो गए, उस जमाने के सब भक्त प्रकट हो गए जो जा चुके थे दुनिया छोड़कर, वो सब प्रकट हो गए और बहुत अद्भुत कीर्तन हुआ। और कीर्तन समाप्त होते ही सब अपने आप अंतर्धान हो गए। भक्त भगवान जो है ना वो भक्तों के प्रेम के लिए प्रतिसाद देते हैं, दे ही रिस्पॉन्ड टू द लव ऑफ डिवोटीज। तो फिर जीव को भगवान ने नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि आप चैतन्य महाप्रभु ने आपके दोनों चाचाओं को वृंदावन का दान दे दिया है, वृंदावन धाम में उनको भेज दिया, बोला कि इस धाम को प्रकट करो, इस धाम में जो भी स्थान लुप्त हो गए उनको प्रकट करो, वहां पर मंदिर बनवाओ, वहां पर विग्रहों को स्थापन करो, ग्रंथों का अध्ययन करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखो सरल भाषा में, और वैष्णव शिष्टाचार लोगों को सिखाओ, वैष्णव व्यवहार कैसे रहना है, कैसे जाना है, बोलना है, कैसे पहनना है, सब उनको लोगों को सिखाओ। एक तरह से बोलते ना मराठी में कि तेने तना वृंदावन आंदन दिल, मतलब अभी वृंदावन धाम तुम्हारा है, उसको डेवलप करो, आपका प्रोजेक्ट है। तो नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं कि आपके चाचा लोगों को पूरा वृंदावन धाम भगवान ने ऐसे ही दे दिया है प्रेम से, आपको भी वहीं जाकर रहना चाहिए, उनके चरणों में जाकर रहना चाहिए और उनसे दीक्षा भी लेना चाहिए और वही अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु के इस आदेश से वो वृंदावन आए और सीधे सनातन गोस्वामी के पास मिले, बोले महाराज मतलब अंकल थे उनके, मुझे दीक्षा चाहिए, आप मुझे स्वीकार करो। तो सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं, हाँ माता जी आप लिखते रहिए। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से बड़े भाई हैं, लेकिन नम्रता से उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा भक्ति में प्रगति करने वाला रूप है, आप उनसे दीक्षा ले लो। तो रूप गोस्वामी के शरण में आए हो, तो रूप गोस्वामी ने उनको शरण में लिया और दीक्षा दिया, अनुग्रह किया। एक साल तक कहते दीक्षा नहीं दिया उनको, और इस एक साल में जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी की एकदम निम्न सेवा की, लकड़ी तोड़ना उनके लिए, हाँ उनके लिए फल तोड़ के लेके आना, पत्ते तोड़ के लेके आना। रूप गोस्वामी किताब लिखते थे ना हमेशा, तो वो कंप्यूटर नहीं था उनके पास, लैपटॉप नहीं था, सब सॉफ्ट कॉपी में बना के रखा है, पेड़ के पत्ते लाकर उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता था, कुछ विशिष्ट पेड़ के पत्ते लाकर उसको कुछ दवाई वगैरह जड़ी बूटी लगा के फिर वो लिखने लायक होते थे। फिर वो मोर पंख में कुछ टाँक डुबा के उसको शाही बनाते थे, उसमें लिखते थे वो पत्ते जो है ना, जैसे कि आप मैं किताब लिख रहा हूँ तो आप मुझे पेपर लाके दे रहे हो समझो, वैसे वो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं तो उनको लिखने के लिए पत्ते लाके दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं और रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। और ये बाद में इतने विद्वान थे कि रूप गोस्वामी ने उनको अपनी किताब को संपादन यानी कि एडिटिंग करने का काम भी दिया था, ऊपर से उसको एडिटिंग भी करते थे। इतना नम्र सेवा, उन्होंने झाड़ू लगाते थे, उनका कपड़े धोते थे, उनका भोजन बना के देते थे, एक साल तक सेवा किया उन्होंने। ऐसा देखो सब लोग ध्यान से सुनो, गुरु की सेवा किए बिना कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता है, तो आप बोलेंगे हमारे गुरु ही नहीं अब तक। तो गुरु को ढूंढना हमारा कर्तव्य है, ऐसे गुरु को ढूंढना जिनको हम जीवन समर्पित कर सकते हैं, ऐसे गुरु को ढूंढना जो भगवान आपको दे सकते हैं। व्यक्ति भी योग्य हो, हम भी योग्य हो जाए उनके, है ना, और उनसे दीक्षा ले लें और दीक्षा ग्रहण करें, शिष्य बने उनके, और उसके बाद में उनकी आज्ञाओं का पालन करें, तब जाकर भगवान प्राप्त हो सकते। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। गुरु की सेवा किए बिना कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। एक साल सेवा करने के बाद उनको दीक्षा दिया, फिर रूप गोस्वामी देखते हैं कि ये जीव के हृदय में भगवान के विग्रहों की सेवा करने की बहुत इच्छा है। देखिए कैसे भाग्य उनका। मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था कि रूप गोस्वामी के मन में इच्छा हुई कि इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, उनको भगवान के विग्रहों की सेवा करने की इच्छा है। राधा रानी उनके स्वप्न में आई, रूप गोस्वामी कोई मूर्तिकार नहीं थे, उनका बिजनेस नहीं था मूर्ति बनाने का, कोई ट्रेनिंग नहीं थी उनको। राधा रानी ने स्वप्न में आकर रूप गोस्वामी को सिखाया कि पत्थर की मूर्ति कैसे बनाई जाती है अपने हाथ से, और उनको अनुग्रह दिया कि आप जीव के लिए मूर्ति बनाओ। फिर रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से जीव के लिए वो क्या कहते हैं उसको, कीला और हथौड़ी और चीजल लेके सुंदर मूर्ति बनाई। उस मूर्ति का नाम है राधा दामोदर भगवान। बोलो राधा दामोदर भगवान की। ये दामोदर जी के विग्रह स्वयं रूप गोस्वामी ने उनके मंदिर में जहां पर वो रहते थे वहां पर स्थापित किए। अभी इसका भी थोड़ा इतिहास है। जब रूप गोस्वामी का राधा गोविंद देव का मंदिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य राजा मान सिंह के द्वारा बनाया जा रहा था, तो कंस्ट्रक्शन साइट से वो निकल गए और जीव गोस्वामी जहाँ रहते थे वहाँ पर रहने गए वो। इसलिए आज भी वृंदावन में जीव गोस्वामी के राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी के भजन कुटी और रूप गोस्वामी का समाधि है। तो उस समय वहीं रहते थे वो, और जीव गोस्वामी वहीं रहते थे, तो वहीं पर उन्होंने राधा दामोदर जी का विग्रह स्थापन किया और रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को सौंप दिया उसे। फिर दामोदर जी का विग्रह में आप जाएंगे ना, आप ध्यान रखना इस बात का। हमारे परम पूज्य गिरिराज महाराज बताते हैं कि दामोदर जी के विषय में रूप गोस्वामी लिखते हैं अपने भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में। इनकी विशेषता क्या है कि दामोदर जी भगवान जो है वो आप और हमने की हुई छोटी सी सेवा को बहुत बड़ा कर देते हैं, हमारे लिए अच्छा है ना। वो सारी सेवा लेंस में देखते हैं, लेंस में आप इतना सा कर रहे हो तो वो इतना बड़ा देखते हैं, और उतना बड़ा देखकर उतने बड़े रूप में स्वीकार करते हैं। दैट मीन्स ही मैग्निफाइज द सर्विस दैट यू डू, द इनसिग्निफिकेंट सेवा दैट यू डू ही मैग्निफाइज इट एंड देन एक्सेप्ट इट। दामोदर जी का ये वैशिष्ट जो है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में लिखा है। तो दामोदर जी का एक महीना आता है दामोदर मंथ, उसको क्या बोलते हैं, कार्तिक। तो दामोदर जी का ये स्वभाव जो है वो उनके द्वारा नाम दिए गए उनका महीने में भी आ गया है। उस महीने में जो भी आप लोगों का ड्यूटी है उनको शांत रखने का। तो दामोदर जी के नाम पे जो महीना है वो महीने का भी ये गुणधर्म है कि उस महीने में आप जो भी कुछ थोड़ा सा करते हो ना उसको हजारों गुना दामोदर जी बढ़ाते हैं और स्वीकार करते हैं। और इसलिए इस महीने को राधा रानी अपना महीना मानती है, ऊर्जेश्वरी उनका नाम है, और इस मंत्र को भी ऊर्जा ऊर्जा व्रत का मंत्र माना महीना माना गया है। तो नाम दामोदर का है लेकिन आधिपत्य राधा रानी का है, और वो भी दामोदर के द्वारा बढ़ा चढ़ा के बनाई हुई सेवा जो है उनके चरणों में भक्तों के द्वारा अर्पण कर लेती है। दामोदर जी ने ऐसा कृपा किया हमारे ऊपर। तो आप जब जाएंगे तो जरूर उनके सामने पुकारना, हाँ आप जब 1% पुकारेंगे ना उसको 100% बना देंगे अपने आप ही वो, और स्वीकार कर लेंगे, ऐसा मौका नहीं गंवाना आप, है ना। तैसे जीव गोस्वामी जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पधार गए तो जीव गोस्वामी जो है वो गौड़ियों के आचार्य बने। उसके बीच में जानवा देवी वृंदावन में आके चली गई, तो जानवा देवी ने भी जीव गोस्वामी के ऊपर बहुत कृपा किया। सच्ची माता ने भी जब मिलने गए थे, सच्ची माता थी वहां पर, उन्होंने भी बहुत कृपा किया। विष्णु प्रिया देवी ने जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी उन्होंने उनको भोजन कराया अपने हाथ से, और कहते हैं कि जब विष्णु प्रिया के हाथ से बनाया हुआ और धामेश्वर गौरांग महाप्रभु का विग्रह को अर्पित किया हुआ प्रसाद जब सची माता परोसती है तो वो खाकर उनके आंखों से आंसू बहते हैं। ऐसे भाग्यवान जीव थे वो जीव गोस्वामी, जो साक्षात भगवान की माता के हाथ से, भगवान की पत्नी के हाथ से भोजन पाकर आए हैं। इतना भाग्य उनका। तो आगे जाकर जीव गोस्वामी ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं। उनका एक महान ग्रंथ है गोपाल चंपू, जिसमें उन्होंने महाप्रभु के आदेश अनुसार भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है, मनमोहक वर्णन किया है गोपाल चंपू में। विस्तार रूप में भगवान की लीलाओं का एकदम सिद्धांतिक स्वरूप से और विस्तार रूप में टेक्निकली भी सब सिद्धांत समझाते हुए उन्होंने भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, श्री गोपाल चंपू नाम। और जी गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे हैं, 6 संदर्भ, उसमें बहुत ऊंचे तत्व का उन्होंने वर्णन किया है। कृष्ण संदर्भ, जीव संदर्भ, तत्व संदर्भ, ऐसे 6 संदर्भ ग्रंथ लिखे उन्होंने, जो हमारे भक्ति के अंतिम सिद्धांत को समझने में बहुत आवश्यक है। तो आप राधा दामोदर जी के मंदिर में जाएंगे तो उनकी प्रार्थना करना कि उनके अंदर जो कृपा है भगवान की उन्होंने प्राप्त की है, थोड़ी हमको भी मिल जाए। और दामोदर जी के मंदिर में मेरे ख्याल से राधा वृंदावन चंद्र के विग्रह भी हैं। अभी वृंदावन के मंदिर में तो है, यहाँ के मंदिर में दोबारा मुझे भी याद करना है क्योंकि मैं बहुत साल के बाद आ रहा हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी नाम के एक महान आचार्य हुए हैं, वो भी इसी समय में थे। उनको सब भक्तों ने, पहले तो वो वृंदावन नवद्वीप से वृंदावन आए, रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण में आए राधा कुंड पे और वहीं पर रहे। और उन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी थे ना, रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु का शरीर उन्होंने छोड़ के मतलब अंतर्धान हो गए वो, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि अभी जीवन को अंत करना चाहिए, अभी महाप्रभु के जाने के बाद जीने में कोई मतलब नहीं है। तो गोवर्धन पे चढ़कर गोवर्धन से कूदने का प्लानिंग कर रहे थे वो, गोवर्धन पे चढ़कर आत्महत्या करने का प्लानिंग कर रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आए, जा चुके हैं वो, लेकिन स्वप्न में आए। रघुनाथ, संन्यास का अर्थ क्या होता है? संन्यास का अर्थ होता है काया वाचा मने, शरीर से, मन से और वाचा से आप भगवान से समर्पित हो। और संन्यास का मतलब होता है कि दुनिया के लिए आप मर चुके हो, लेकिन अभी जो भी बचा हुआ है वो सब भगवान का है, आपने भगवान को अर्पण कर दिया है। और संन्यास लेने के बाद में आप आत्महत्या का प्लानिंग कर रहे हो, जो शरीर अभी आपका है ही नहीं, जो आपने मुझे दे चुके हो आप, उसको नष्ट करने का अधिकार कैसे प्राप्त हो गया आपको? अगर आप खुद को संन्यास समझते हो और ये भी समझते हो कि काया वाचा मने में भगवान की शरण में हूं, वो उनका है सब कुछ, तो उसको नष्ट करने का अधिकार किसने दिया आपको? तब वो बोले, हाँ महाराज, क्या आ गया आपकी? बोले, आपको जीवित रहना है और मेरी लीलाओं का वर्णन जो है लोगों को बताना है। तो फिर वो जीवित रहे। बड़े विरह में तो रोते थे बहुत, लेकिन उनको आदेश दिया गया था, इसलिए रोज दोपहर को 3 घंटे के लिए वो रोज गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते थे, जो उन्होंने दर्शन किया था और सुना था और जानते थे वो। उस कथा में जानवा देवी भी आकर बैठी हुई है कई दिन तक वहां निवास करके। उस कथा में हर रोज कृष्णदास कविराज बैठा करते थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जीवन का जो उत्तरार्ध है, 24 साल के बाद में जो 48 साल तक का पीरियड है, उसकी सारी कथा रघुनाथ जी गोस्वामी महाराज ने उनको सुनाई। ओ कृष्णा गोविंदा, फिर कब खुलेगा बस? तो मुश्किल है अभी वहां पहुंचना। हरे कृष्णा। तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मुरारी गुप्ता से भगवान के बाल लीलाओं का नोट्स लिया और ये नोट्स भी बनाया। उनको भक्तों ने आदेश दिया कि आपको चैतन्य चरितामृत लिखना है, भगवान का चरितामृत लिखना है। तो फिर वो मदन मोहन जी के पास आए, मदन मोहन जी का आशीर्वाद लिया, तो मदन मोहन जी की माला जो है उनके गले में पड़ी, तो उन्होंने ये अनुग्रह समझा। और फिर वो जीव गोस्वामी के पास में आए, उनका भी अनुग्रह लिया, आशीर्वाद लिया, सब गोस्वामी का आशीर्वाद लिया। फिर राधा कुंड वापस चले गए और उम्र के 90 साल की अवस्था में उन्होंने चैतन्य चरितामृत नाम का सुंदर ग्रंथ का निर्माण किया, जो चैतन्य महाप्रभु के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन उसमें किया गया है। तो वो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, उनके विग्रह राधा वृंदावन चंद्र, जो उन्होंने अपने हाथों से सेवा किया है वो भी उस मंदिर में शायद है जय गोस्वामी के, आप दर्शन कर लेना। मैं भी अभी आ रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।